Awakening with Brahma Kumaris.
Om Shanti and a very warm welcome to Awakening with Brahma Kumaris. जीवन के हर परिपेक्ष को हमने साथ मिलकर खूब देखा है, खूब जांचा, परखा, अनुभव किया और उन एक्सपीरियंसेस को साथ बैठकर शेयर किया है। अब जिंदगी अच्छी लगती है, लेकिन अभी भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम और बात कर सकते हैं, जैसे कि जिम्मेवारी लेना। हम में से हर कोई किसी न किसी कदम पर, जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी चीज के प्रति जिम्मेदार जरूर होता है। कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जब हम अपनी पूरी जिम्मेदारी जो हमारे हाथ में है उसे सही तरह से निभा पाएं? हमारे पास कई सवाल होते हैं कि क्या हम ठीक तरह से उस जिम्मेदारी को उठा पा रहे हैं, क्या हम सही तरह से अपनी जिंदगी को, उस जिम्मेवारी को लीड कर पा रहे हैं, नेतृत्व उसका सही तरह से कर पा रहे हैं। चाहे वो घर में जो हाउसवाइफ हैं वो हों, उन्हें अपने पूरे घर को लीड करना है, किस तरह से गृहस्थी को संभालना है, बच्चा हो किसी स्कूल में, किसी जो कंपटीशन में जा रहा है उसे कैसे लीड करना है, या फिर आगे बढ़ते हुए कॉर्पोरेट सेक्टर की बात हो अगर वो लीडर बनना चाह रहे हों, तो ये सारी बात आती है सही तरह से उस जिम्मेदारी को उठाना। और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर दीपा, उनसे बात करते हैं। सिस्टर दीपा, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति।
ओम शांति।
ये बात तो बिल्कुल सच है कि जिम्मेदारियां हम चाहें या ना चाहें हमें आती हैं हमारी जिंदगी में, और हम चाहते हैं कि जो भी जिम्मेदारी हमें मिले हम उसे बखूबी निभाएं, लेकिन सही परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि अब जब हम ज्ञान के साथ चल रहे हैं तो सारे पर्दे एक बार फिर उतरते हैं और हमें एक नया परिप्रेक्ष्य मिलता है। सही तरीका क्या रहेगा किसी भी जिम्मेदारी को समझने का और फिर उसे निभाने का?
उस जिम्मेवारी को जब हम देखते हैं तो उस जिम्मेवारी में हमें क्या अंतर की विशेषताएं आवश्यक है उसको निभाने के लिए, उस हायर हम विजन को सामने रखते हैं तो उसमें हमारी इनर कैपेबिलिटीज को हमें डेवलप करना है और फिर उस जिम्मेवारी में, उस क्षेत्र में हमें लीड करना है। तो हम देखते हैं जिम्मेवारी निभाने के लिए हमें आंतरिक रूप से इंटरनल लीडरशिप क्वालिटी को भी डेवलप करना होगा, और उस नेतृत्व में जब हम अपने आप को लीड करना शुरू करते हैं, इट बिगिंस विद योर स्टेट ऑफ माइंड, क्या मैं सही मानसिक स्थिति में रह पाती हूँ? वो जिम्मेवारी के लिए जो आवश्यक स्टेट ऑफ माइंड है, जो हमारे स्वमान की आवश्यकता है, जो अंतर की हमें सही फीलिंग्स और सकारात्मकता की आवश्यकता है, जो एक कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है, वो है उस स्टेट ऑफ माइंड को अगर मैंने लीड कर लिया, अपने स्वयं की जिम्मेवारी ले ली, तो फिर कारोबार की जिम्मेवारी लेना बहुत सहज हो जाता है, मैं बहुत सहज रूप से उसको निभा पाती।
तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि जिम्मेवारी अपनी है, अपने को, खुद को लीड करने का, खुद की लाइफ को लीड करने का जो आस्पेक्ट,
अपने मन की स्थिति को लीड करना, तो उसको मैंने लीड किया और राइट स्टेट ऑफ माइंड में, राइट एटीट्यूड में मैं रहती हूँ कारोबार के प्रति, तो ऑटोमेटिकली वो कारोबार में मैं सफल हो सकती हूँ, मैं उसकी जिम्मेवारी निभा सकती हूँ।
और होता ये है बहुत बार की जिम्मेवारी बोझ लगने लगती है, जहाँ ये लगने लग जाए कि मुझे नेतृत्व अगर करना है या मुझे लीड करना है या मुझे वो जिम्मेवारी लेनी है, तो वो बहुत बड़ी परेशानी है। और बहुत बार देखा गया है ये कि कोई भी जिम्मेवारी हम बखूबी निभाते निभाते भी कई बार इतना थक जाते हैं कि हमें वो बोझ लगने लगती है। जब ऐसा होने लग जाए तब क्या जरूरत है?
हम जिम्मेवारी को बोझ तब समझते हैं जब हम देखते हैं कि हम उसमें अपने स्वयं के आंतरिक जो एक्सपीरियंसेस है उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं, कंटेंटमेंट नहीं है, हमें लगता है हम आगे नहीं बढ़ रहे, हमारी कैपेबिलिटीज आगे नहीं बढ़ रही। अगर हम उस सिचुएशन को देखें कि वहाँ कैसे हमारी इंटरनली हम डेवलप होते जा रहे हैं, जैसे हमारी जो इनर क्वालिटीज है लीडरशिप की वो कैसे डेवलप होती जा रही, हमारी सुनने की जो क्षमता है वो कैसे बढ़ती जा रही है, बहुत प्रेशर है, कई लोगों को हमें कारोबार में लीड करना है तो उनकी बातें सुननी है, समझनी है, तो वो जैसे हम महसूस करते हैं कि हमारी इंटरनल कैपेबिलिटीज डेवलप होती जा रही, हम और मजबूत होते जा रहे हैं, तो वो जिम्मेवारी बोझ नहीं लगती और ही हमें लगता है कि मौका मिल रहा है। लाइफ इज गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू लीड, जिम्मेवारी जैसे एक मौका महसूस होता है, और उसमें जब हम वो मौके के रूप में उसको देखते हैं तो हम बहुत खुशी से अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार कर लेते हैं, उससे संबंधित जो कैपेबिलिटीज उसको डेवलप कर लेते हैं, उस कॉन्फिडेंस में रहते हैं और फिर आगे लीड करना शुरू करते हैं।
दैट्स अ ब्यूटीफुल वे ऑफ एक्चुअली लुकिंग एट इट, कि अगर मुझे जिम्मेवारी मिली है तो ये एक मौका है जब मैं लीड कर सकता हूँ। हम में से हर कोई लीड करना चाहता है, नेतृत्व करना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन सही पर्सपेक्टिव जो है वो लीड करने का, एक लीडर को अगर हम देखें, नेता जो है, नेतृत्व जो कर रहा है किसी भी सिचुएशन का, वो किन एबिलिटीज के साथ होगा?
पहली एबिलिटी मैं समझती हूँ कि लिसनिंग बहुत आवश्यक है, सुनने की मनोवृत्ति। क्योंकि जब आप व्यक्तियों के संगठन में हैं, चाहे एक गृहिणी है, हाउस वाइफ है, तो वहां भी उसको परिवार को लीड करना है। चाहे हम देखते हैं बच्चा है, वो स्कूल में है, उसको कोई टीम को लीड करना है, वो क्लास का मॉनिटर है, या किसी भी रूप से वो एक ग्रुप के साथ काम कर रहा है, तो वहां भी लोगों को लीड करना है। लोगों के साथ जब आप कारोबार करते हैं तो सुनने की मनोवृत्ति बहुत आवश्यक है। तो लिसनिंग एटीट्यूड जो है वो बहुत आवश्यक है। हम कहेंगे हम सुनते तो हैं, कोई व्यक्ति बोलता है तो हम सुन रहे हैं।
और एक और यहाँ मैं ये जोड़ना चाहूंगी कि अधिकतर अभी तक हमने ये माना है कि लीडर वो है जो बहुत अच्छा बोल ले।
हाँ जी,
जो कन्विंस कर पाए।
हाँ जी,
जो आपको मतलब बहुत अच्छे तरीके से बोल के आपको एक सही दिशा दे पाए। सो ये मतलब एक पहला जो आपने मुझे बोला है कि वो लिसनिंग पावर।
लिसनिंग पावर, तो हम देखते हैं कि जो सुनता है वही अच्छा बोल सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि सुनना अर्थात समझना, हियरिंग और लिसनिंग, इन दोनों में अंतर है। कोई व्यक्ति बोल रहा है, मैं बैठकर सुन ही तो रही हूँ, लेकिन क्या मैं सुन रही हूँ? जो एटीट्यूड जो है वो लिसनिंग है, वो ओपननेस है, समझने की एक भावना है, मैं उसको स्वीकार कर रही हूँ। तो अगर वो भावना है समझने की, स्वीकार करने की, तो वो जानकारी मेरे पास आ रही है
अंदर लेने की
भावना। नहीं तो क्या है, वो बातें मैं सुनती हूँ, अगर वो मेरे अपने विचारधारा से मिलती है तो मैं अंदर लेती हूँ, अगर मेरे विचारधारा से नहीं मिलती है,
हाँ,
लेट गो, मुझे वो अच्छी नहीं लगी, मैंने सुना ही नहीं। तो हम देखते हैं कि अगर हम उस रूप से जानकारी नहीं स्वीकार करते, समझते नहीं है, तो हमारी अंतर की ग्रोथ नहीं होती, हमारे विचारों में भी नवीनता नहीं आती। दूसरा, कम्युनिकेशन में हम देखें कि कम्युनिकेशन में लिसनिंग अर्थात आई सीक टू अंडरस्टैंड बिफोर आई सीक टू बी अंडरस्टूड, ज्यादा करके क्या होता है, मैं पहले अपनी बात समझाने की कोशिश करती हूँ कि नहीं, एक मेरी बात सुनिए, ये ऐसा ऐसा है। वो सामने वाले व्यक्ति की बात सुनना ये हम कम प्रेफर करते हैं, हम समझते ठीक है बाद में सुन लेंगे, पहले मेरी बात तो मैं स्पष्ट कर लूं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें, अगर हम अपनी बात न कह के पहले सामने वाले व्यक्ति की बात सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद अपनी बात कहते हैं, तो क्या होगा, फायदा ये है कि उस व्यक्ति के विचार हमें पता पड़ जाते हैं, उसकी मानसिक स्थिति, उसकी समझ, उसकी लेवल क्या है अंडरस्टैंडिंग की, इस समय वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है, उसको कौन सी बात अपील करेगी, किस रूप से ये बात मैं उसको समझा सकती हूँ, क्या वो नहीं समझ सकेगा, क्या वो समझ सकेगा, वो पता पड़ जाता है। तो फिर हमारा कम्युनिकेशन बहुत एक्यूरेट रहता है, हम बहुत सही रूप से और स्पष्ट रूप से उससे बात कर सकते हैं, उसकी वो बात जो हमने कही वो समझ सकता है।
बिल्कुल, वो क्लैरिटी जो है उसके पर्सपेक्टिव में। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम क्या ये चाह भी रहे होते हैं कि दूसरा समझे, क्योंकि कभी हमने कभी भी ये सोचा ही नहीं, क्योंकि हम अपने ही पर्सपेक्टिव में हम इतने सही होते
सही
हैं
बात है।
कि हम ये कभी चाह ही नहीं रहे होते कि दूसरा भी समझेगा या नहीं।
सही बात है, लेकिन हम देखते हैं कि अगर हम अपनी बात दूसरे व्यक्ति के पास समझाते नहीं है, वो हमारी बात समझता नहीं है, तो वो उस बात के साथ तालमेल नहीं कर सकता है। और संगठन से ही काम करना है, मैं कितना भी कोई कार्य में सक्षम हूँ, आई एम वेरी गुड एट माई वर्क, आई हैव ऑल द केपेबिलिटीज, लेकिन अगर मुझे संगठन की मदद नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो मैं उस कार्य में सक्षम नहीं हो सकता हूँ, सफलता मुझे प्राप्त नहीं हो सकती। तो संगठन में अगर हम देखें तो सुनने की वृत्ति बहुत आवश्यक है, लेकिन क्या मेरे पास वो पेशेंस है, क्या मेरे पास वो ओपननेस है उस माइंड का? अगर मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ पता है, हाँ मैंने जो सोचा वही राइट है, तो मुझे और कोई भी बात सुनने के लिए मैं तैयार नहीं।
लेकिन आपने जैसे हम ये कहते हैं कि आई एम अ लीडर, एक वो पहले ही अपना स्टेटस में यहाँ पहुंच जाता हूँ, आई हैव टू लीड, या मुझे नेतृत्व करना है, तो वो जो सुनने की जो कहीं टेंडेंसी है वो मैं कहीं पहले ही खत्म कर देती हूँ।
इसलिए लीडर अर्थात पहले मैं अपने मन को लीड कर सकूँ, मैं सही स्टेट ऑफ माइंड में रह सकूँ, तो अगर वहाँ है और फिर सबको साथ लेकर चल सकूँ, क्योंकि लीडर की जो शक्ति है वो संगठन के आधार से, उसकी स्ट्रेंथ उसके संगठन को सफल करने में। जैसे गृहिणी है, अगर उसको कोई कार्य में लीड करना है, उसको परिवार को दिशा देनी है, तो सभी का सहयोग के साथ ही वो कार्य में लीड कर सकती है, वो इनिशिएटिव ले सकती है। अगर उसको सभी का सहयोग नहीं है तो फिर वो नेतृत्व का जो एक ऑब्जेक्टिव है वो ही सफल नहीं हो पाता। तो इसलिए वो सहयोग आवश्यक है।
बिल्कुल, और जिस तरह से आपने कहा कि पहली जो बात है, पहली वर्च्यू, पहला जो एक एस्पेक्ट एक लीडर के पास, चाहे किसी भी चीज को आप लीड कर रहे हो, चाहे अपनी लाइफ को लीड कर रहे हो, वो है लिसनिंग। सुनना और फिर उसे समझना।
और सुनना आज बहुत आवश्यक है। अगर हम परिवार में भी देखते हैं तो माता पिता महसूस करते हैं कि आज बच्चे उनकी बात सुनते नहीं है, लेकिन माता पिता बच्चों की बात कितना सुनते हैं,
बहुत जरूरी बात है।
हमारे पास सेंटर्स पर भी हम देखते हैं भाई बहन आते हैं, परिवार आते हैं, बच्चे, तो बच्चे कई बार ये कंप्लेन करते हैं कि मदर फादर जो है समय तो हमारे साथ बिताते हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात सुनते नहीं। हमें जो कहना है हमें मौका नहीं दिया जाता है कि हम अपनी भावनाएं, हम अपने विचार, हम अपने दिल की बात उनके साथ शेयर कर सके। तो वो सुनने की जो एक भावना हो, वो रैपो डेवलप हम कर सके, तो हम देखते हैं कि अगर आप उनकी बात सुनते हैं तो वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कम्युनिकेशन में हम देखते हैं गिव एंड टेक बहुत आवश्यक है ना। तो जब आप कम्युनिकेशन में सुनना शुरू कर देते हैं, सामने वाले व्यक्ति की बात सहमत न भी हो आप उससे, शायद आपके विचार से वो भिन्न है, लेकिन अगर आप वो बात को सुनते हैं और समझने का एक अपने को मौका देते हैं कि एक अलग विचार है, इस रूप से भी सोचा जा सकता है, तो जब आप अपने विचार व्यक्त करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को भी फील होता है कि नहीं, इन्होंने मेरी बात सुनी है, तो आई हैव टू ऑल्सो रिस्पेक्ट एंड गिव रिगार्ड, मुझे भी इनकी बात सुननी है। तो जब एक दूसरे की बात सुनने की और समझने की भावना आ जाती है, when we start listening to each other and understanding each other, तो कहीं ना कहीं वो ब्रिज बिल्ड हो जाता है। फिर कोई ना कोई बातों में हम सहमत हो जाते हैं, लेकिन जिन बातों में सहमत न भी है उसके लिए हम ओपन रहते हैं। आज नहीं है, कल फिर से हम ये बातों के बारे में शेयर कर सकते हैं,
क्योंकि हर पल हम बदल रहे हैं। ये एक और स्वीकार करके, हमने चेंज की बात की थी, तो हो सकता है आज मुझे नहीं समझ में आ रहा, आज मेरे लिए वो नहीं है, लेकिन दिन भर में क्या हो जाए, क्या बदलाव आए कि कल मुझे जो है वो, सो कहीं ना कहीं वो रिश्ता ना टूटे, लेकिन जो सिचुएशन है वो रह सकती है, उसी भाव में रह सकती है, और हो सकता है एक दिन ऐसा है जब कहीं ना कहीं
लिसनिंग से रिलेशनशिप जो है वो बहुत उसका बॉन्डिंग जो है स्ट्रांग हो जाता है, और हमारी जानकारी भी बढ़ती जाती है। हमने आज तक जो सोचा है, जो तरीका अपनाया है, जो हमारे पास स्ट्रैटेजीज है, जो हमारे पास मीन्स है सक्सेस के लिए या अपने कारोबार करने के लिए, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये नए विचार है, नया तरीका,
इनोवेशन है, जहाँ आज बिल्कुल पूरी दुनिया जो है इनोवेशन पे इतना काम कर रही है, तो वो लिसनिंग जो है हमें,
तो जितना हम सुनते उतनी ज्यादा जानकारी, तो उतनी ज्यादा समझ, उतने ज्यादा हम कारोबार में सफल होते हैं, उतने ज्यादा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं,
और दूसरी तरफ दूसरे की अंडरस्टैंडिंग भी समझ में आती है, दूसरे के जो
रिस्पेक्ट, क्योंकि एक दूसरे की बात सुनना माना ही रिस्पेक्ट और रिगार्ड देना।
बिल्कुल, तो ये एक लीडरशिप का एक ऐसा एस्पेक्ट जो कि हमने कहा कि प्रोग्राम के दौरान जो है वो ऐसे एस्पेक्ट सामने आते हैं जिनके बारे में हमने नहीं सोचा होता। तो लिसनिंग के बाद आगे बढ़ें और अपने उन वर्च्यूज के बारे में बात करें जो हमें लीडरशिप की सही दिशा में लीड करने का एक माध्यम दे सकते हैं।
सही बात है। तो लिसनिंग भी कब होगी, जब हम अवेलेबल रहेंगे, वर्तमान में उपस्थित रहेंगे। कई बार हम देखते हैं कि हम बैठे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सुन नहीं रहे, क्योंकि हमारे मन या बुद्धि के द्वारा हम कहीं और उपस्थित हैं, कहीं और अवेलेबल हैं, राइट, मैक्सिमम टाइम। तो हम वर्तमान में कितना समय रहते हैं, सारे दिन में अगर चेक करें, जस्ट इन द नाउ, इन दिस मोमेंट हम कितना समय रहते हैं, काफी समय तो हम पास्ट में चले जाते हैं, पास्ट की चिंताओं में
कंटिन्यूस
सोचते रहते, ऐसे क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये हुआ इसलिए ऐसा हुआ, या कभी कभी भविष्य की ओर चले जाते हैं,
अब क्या होगा,
अब क्या होगा, अब हमने ये प्लान तो किया, सफल होंगे, मुझे ये सहयोग मिलेगा, ये हो सकेगा, ये हुआ तो क्या होगा, तो हम कितने विचार भविष्य की चिंता के प्रति भी सोच लेते हैं। तो प्रेजेंट में हम सारे दिन में कितना समय रहते हैं,
बहुत कम,
बहुत कम। प्रेजेंट माना गिफ्ट, जितना मोमेंट हम वर्तमान में है वो हमारे लिए गिफ्ट है, क्योंकि ये मोमेंट में हम जो चाहे वो कर सकते हैं, वी कैन ब्रिंग अबाउट चेंज, ये पल जो है मेरे हाथ में है, पास्ट जो है मैं उसको बदल नहीं सकती, और फ्यूचर उसका भी आधार ये वर्तमान है, आज जैसा है वैसा ही मेरा फ्यूचर, कल मैंने जो डिसीजन लिया उसका एक्सपीरियंस, उसका फ्रूट मैं आज अनुभव कर रही हूँ, उसके वजह से आज मैं ये लाइफ में अनुभव कर रही हूँ, मैंने कल अपने डाइट का ध्यान रखा है, अपने एक्सरसाइज किया हुआ है, अपने हेल्थ के प्रति अटेंशन रखा है, इससे आज मैं हेल्दी हूँ, अगर भी कोई एलिमेंट है, फिजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको मैं डील कर पा रही हूँ। तो वर्तमान जो है पास्ट के डिसीजन के आधार से, तो आज जो मैं डिसीजन लूंगी इट ब्रिंग्स माई फ्यूचर, इट क्रिएट्स माई फ्यूचर। तो वर्तमान और भविष्य दोनों मेरे हाथ में, दोनों को मैं प्रभावित कर सकती,
दोनों को बदल सकती,
दोनों को बदल सकती।
हम ये सोचते हैं कि कोई और बदल दे, हम कितना कितना फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि पहले से,
पास्ट को भी हम बदल सकते हैं, आज के पास्ट को नहीं बदल सकते लेकिन कल के पास्ट को बदल सकते हैं, क्योंकि आज का मेरा प्रेजेंट जो है कल का पास्ट हो जाएगा। और पास्ट के प्रति जो हमारा पर्सपेक्टिव है उसको भी हम बदल सकते हैं,
वो तो हमारे हाथ में,
हमारे हाथ में। आज मैं पास्ट को फेलियर के रूप में नहीं देखती हूँ कि वो फेलियर ने भी मुझे ट्रेनिंग दी, जैसे लाइफ भी हमें ट्रेन कर रहा है, कोई ना प्रकार की हमें शिक्षा देता जा रहा है, अनुभव देता जा रहा है। तो आज जो मैं हूँ, मैं इतना समर्थ कैसे अपने कारोबार में हूँ, क्योंकि पास्ट के वो जो चैलेंजेस है उसने मुझे ट्रेन किया है, मुझे फोर्स किया है कुछ कैपेबिलिटीज को अंदर डेवलप करने के लिए, मुझे आंतरिक रूप में स्ट्रांग किया है, समर्थ बनाया, तो आज मैं हूँ। तो इसलिए पास्ट के प्रति दृष्टिकोण भी बदल गया, अब मैं उसके प्रति कोई दुखी नहीं फील करती, आई डोंट फील द सॉरो ऑफ द पेन,
यू नो, पेन इज नॉट देयर। हमने इस बार पहले भी बात की थी कि फॉरगिव एंड फॉरगेट हम जब बात करते हैं,
लेट गो कर लेते हैं,
फॉरगिव तभी करेंगे जब वो फॉरगेट तो नहीं कर पाते, क्योंकि इंसिडेंट हुआ है जिंदगी में, तो वो है जब पेन जुड़ी हुई जो है उसके साथ उसको भूल जाएंगे।
अगर हम सोचते हैं कि पास्ट में कोई बहुत डिफिकल्ट रिलेशनशिप था जहां मुझे बहुत टॉलरेंस एक्सपीरियंस करना पड़ा, तो हम उसको थैंक कर दें क्योंकि उसने हमें फ्री में सिखाया है, हमें टॉलरिंग बना दिया है। तो उस रूप से हम पास्ट के प्रति भी अपने दृष्टिकोण को बदल देते हैं।
लेकिन हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जब हम विक्टिम बने होते हैं, वी लव टू बी द विक्टिम्स, यू नो, कि हमारे साथ ये गलत हुआ है। तो सिस्टर दीपा, बात यही आई कि लीडरशिप की अगर हम बात करते हैं, हम में से हर कोई वो लीडर बन सकता है किसी भी सिचुएशन में हो, जब हम उसे सही तरह से लीड कर सकते। जैसे आपने कहा कि लिसनिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट फॉर अ लीडर, आगे चले आपने कहा अवेलेबल रहना, जब हम पास्ट और फ्यूचर को छोड़ के इस मोमेंट में है। अवेलेबिलिटी मीन्स किस प्रकार से, फिजिकली अवेलेबिलिटी या मेंटल फैकल्टीज के साथ?
फिजिकल अवेलेबिलिटी फिर भी ईजी है, नहीं, हम जहाँ रहते हैं हम फिजिकली वहाँ हैं, लेकिन मेंटल अवेलेबिलिटी, इसमें अटेंशन चाहिए, क्योंकि हम कारोबार में 8 घंटा वर्क करते हैं, अगर कोई भी प्रोफेशन में कोई भी प्रकार का वर्क है, लेकिन मेंटली हम कितना समय वहाँ हैं। अगर हम बहुत कम समय, आजकल यही कंप्लेन रहती है कि घर में भी लेट पहुँचते हैं, सुबह जल्दी निकल जाते हैं, परिवार के साथ कम समय बिताते हैं, फिजिकली हम उनके साथ कम समय है लेकिन मेंटली भी उतना समय है, या हम अभी भी अपने you know, कोई और चिंताओं में है, कोई ऑफिस की चिंता है, कोई पास्ट की और बातें को वरी कर रहे हैं। तो वर्तमान में रहना और मेंटली अवेलेबल रहना हर कार्य क्षेत्र पर हो, या परिवार में हो, या हम अपने फ्रेंड्स के साथ हैं तो वहां हम उनके साथ हैं, उनके साथ इंजॉय कर रहे हैं वो मोमेंट्स ऑफ क्लोजनेस को, तो वो बहुत जरूरी है। मेंटल अवेलेबिलिटी वो है तो हम अपने हर रोल को बाखूबी निभा सकते हैं, हम उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं और हम इंजॉय कर सकते हैं अपने लाइफ को। नहीं तो क्या है, फिजिकली हम यहाँ हैं, मेंटली हम कहीं और हैं, तो ना वो कारोबार हम कर सकते हैं, ना यहाँ हम जो कारोबार कर रहे हैं उसमें हम सफल हो सकते हैं।
बिल्कुल। और अवेलेबिलिटी एज अ लीडर अगर आता है, जब हम किसी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं या टीम को लीड कर रहे हैं, तब जहाँ आपने लिसनिंग की कैपेसिटी की बात की, लिसनिंग कैपेबिलिटी, वही अवेलेबल होना बहुत जरूरी हो जाता है।
टाइम मैनेजमेंट भी उसमें आ जाता है, क्योंकि हम अवेलेबल रहें, कारोबार के लिए भी उतना समय निकालें, परिवार के लिए भी उतना समय निकालें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, हमारे जो फ्रेंड्स हैं सोसाइटी में, हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रिलेशनशिप्स हैं, उनको भी मेंटेन करें, तो हर जगह पर अवेलेबल रहना है, तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है।
एक बात जो आपने कही वो बहुत अच्छी थी कि किसी भी वक्त पे अपने आप को ऊपर उठा के अपनी ही लाइफ के सारे पर्सपेक्टिव देख ले, जो जो डिफरेंट रोल्स हम प्ले कर रहे हैं।
सही बात है, क्योंकि ये अलग अलग रोल्स हैं लेकिन हम उससे भिन्न हैं। हम जो हम कहते हैं सोल कॉन्शियस, जब हम उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम एक आध्यात्मिक शक्ति हैं। तो आत्मा जब अपने अलग अलग रोल्स को देखती है तो उस पर्सपेक्टिव से आत्मा महसूस करती है कि ये रोल में, ये कारोबार में ये वर्च्यूज मुझे यूज करनी है, ये समय मुझे देना है। फिर जैसे रोल बदलता है तो हम अपने न्यू अवेयरनेस से, न्यू कैपेबिलिटीज से, उस दूसरे वर्च्यूज से वहां रिस्पॉन्ड करते हैं। दूसरा, समय की भी व्यवस्था, टाइम मैनेजमेंट। तो आज तक हमने देखा है ये समय के लिए कहा जाता है, समय हम हमारे हाथ में नहीं है, क्या करें,
वी डोंट हैव टाइम,
24 घंटे 25 घंटे हो जाए तो बेहतर है, फिर भी हम कंप्लेन करेंगे शायद। लेकिन टाइम मैनेजमेंट अर्थात मैनेजिंग माई यू नो इनर स्टेट ऑफ माइंड, हमारे विचार जो है अगर हमारे वर्तमान में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, क्योंकि काफी समय हमारा पास्ट की चिंता में या भविष्य की चिंता में स्पेंड हो जाता है। तो हम कहते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी कई विचार ऐसे चल रहे हैं जहाँ व्यर्थ समय जा रहा है।
इसके आगे अगर हम चलते हैं कि ये तो हमने दो एस्पेक्ट्स लिए अपने, एक लीडर के रूप में, एक जिम्मेवारी को निभाने के रूप में, नेतृत्व अगर हमने करना है कि एक तरफ लिसनिंग पार, लोगों का सुनना या अपने को सुनना,
इन एटीट्यूड्स को डेवलप करने के लिए भी कुछ स्पिरिचुअल पावर्स हैं। तो जैसे हम लिसनिंग देखते हैं, ये एटीट्यूड हमने समझ लिया कि सुनना है, लेकिन उसके पीछे की स्पिरिचुअल पावर कौन सी है जो हमें हेल्प करेगी इसको डेवलप करने के लिए?
आसान नहीं है,
आसान नहीं है। हम समझते हैं लेकिन बहुत मुश्किल है सुनना। जब सामने वाला व्यक्ति हमारी बात से सहमत नहीं है तो हम उसकी बात नहीं सुनना चाहेंगे, और या मुझे लगता है कि मैं सही हूँ, मुझे पता है, तो मैं नहीं सुनना चाहूंगी। तो उस रूप से हम देखते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति जो है और कई गुण हमें इसमें मदद करते हैं। तो लिसनिंग के लिए जो स्पिरिचुअल पावर चाहिए वो है पावर टू विथड्रॉ, या विस्तार को सार में लाने की शक्ति। कुछ समय, थोड़ा समय हम अपने जो भी विचार कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, उसमें हम एक सेकंड के लिए अपने आप को एक पॉज देकर, एक मिनट के लिए हम अपने आप को रिलैक्स करके हम विथड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कछुआ होता है ना, तो कैसे अपने आप को विथड्रॉ कर लेता है, और फिर जो व्यक्ति सामने है उसको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से, एक नए विचारधारा से, ओपन माइंड से उसकी बात को समझें, उसकी बात को सुने। तो अपने जो विचार है कुछ समय के लिए हम उसको रोक कर, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने दृष्टिकोण को रोक कर इस व्यक्ति को समझने का प्रयास करते हैं। उसके लिए गुण भी चाहिए, नम्रता, एक सीखने की भावना है। हम देखते हैं लिसनिंग के लिए सबसे एक बाधा है ईगो।
हाँ, हम सोचते हैं हमें सब कुछ मालूम है,
हमें सब कुछ पता है।
हाँ, और वो क्या बोल रहे हैं, मुझे पता है,
मुझे पता है। इसलिए वो व्यक्ति बोल रहा है और उसके बोलना पूरा नहीं हुआ तब तक आपने समझ लिया, प्लान कर लिया क्या मुझे जवाब देना है। नहीं, हम कई बार देखते हैं कि बच्चे हॉस्टल में बाहर पढ़ने जाते हैं, पेरेंट्स के साथ उनका कम्युनिकेशन होता है फोन पर, तो उनको पता है उनके पेरेंट्स उनसे क्या बोलने वाले, ये चीज किया, ये असाइनमेंट हो गया, आपने पढ़ाई ठीक से की, आपने टाइम पर हॉस्टल में जाते हो, ये हुआ वो हुआ। तो बच्चों का भी कम्युनिकेशन उसी रूप से होता है, उनको पता है मुझे क्या कहना है। तो वो जो रियल फीलिंग्स की शेयरिंग है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो नहीं होती। हम समझ नहीं पाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति इस समय किस मानसिक स्थिति से या किस अवस्था से गुजर रहा है। तो अगर हम नहीं सुन पाते या नहीं समझ पाते हैं, तो जो हमारी जवाबदारी है, जैसे अगर एक पेरेंट की जवाबदारी है कि बच्चे को सही दिशा देना, तो अगर बच्चा अगर गलत प्रभाव में जा भी रहा है, कोई और गलत आदत के प्रभाव में हो भी रहा है, तो क्योंकि वो सुनने की भावना नहीं है, वो रिलेशनशिप में ओपननेस नहीं है, तो उसको पता ही नहीं पड़ता।
बिल्कुल, और हमें भी तो हमें इस बात का, क्योंकि हमने सुना ही नहीं, तो हमें उस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उसका कहीं डायरेक्शन गलत है।
तो उसके पीछे कुछ समय वो विथड्रॉ करने की पावर, जो पॉज करने की, कि सारे दिन में बीच बीच में हम अपने आप को फिर से रिफ्रेश करें, हम अपने आप को फिर से साइलेंस से एम्पावर करें, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से अपने आप को देख सके, उस परिस्थिति और व्यक्ति को देख सके। और वर्चुअल जो है, ह्यूमिलिटी और ओपननेस बहुत जरूरी है। तो ये जब होगी तो वो लिसनिंग की एटीट्यूड पर नेचुरल होती जाएगी, क्योंकि वो सीखने की भावना होगी, नई बातों को समझने की भावना होगी, नई बातों को जानने की जिज्ञासा होगी।
तो ह्यूमिलिटी जो है वो एस्पेक्ट अगर अपने साथ हम लेकर चलते हैं,
हाँ,
तो फिर तभी हम एक्चुअली लिसन तभी हम कर सकते हैं जब हम ये मान के चले कि वो जो बोल रहा है वो हमें हेल्प कर सकता है।
और फिर साथ में हम देखते हैं अवेलेबिलिटी के लिए देखें तो उसके पीछे भी कई स्पिरिचुअल पावर्स हैं और वर्चुअल्स है जो हमें मदद करती है। तो वहां हम देखते हैं कि जो परख शक्ति के साथ साथ हम देखते हैं अवेलेबिलिटी के लिए जो स्पिरिचुअल पावर आवश्यक है वो है पावर टू पैकअप, या हम कहेंगे समेटने की शक्ति, पावर टू पुट अ फुल स्टॉप। ये दोनों पावर्स आपस में बहुत जुड़ी हुई है, पॉज और फुल स्टॉप। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है उसमें भी आप देखिए पॉज और स्टॉप, ये दो बटन्स होते हैं। तो कहाँ मुझे पॉज करना है, कहाँ मुझे स्टॉप करना है। अब जब हम देखते हैं कि बचपन में हम लिखना शुरू करते हैं तो फुल स्टॉप डालना तो बहुत इजी हो जाता है, नहीं, लेकिन अपने विचारों को फुल स्टॉप करना बहुत मुश्किल लगता है। तो वो पास्ट को फुल स्टॉप करना, तो जब हम पैकअप कर लेते हैं पास्ट को, और भविष्य के बारे में भी हम एक योजना बना लेते हैं, लेकिन उसके प्रति भी पॉजिटिव थॉट्स रख के उसको पैकअप करके वर्तमान में आते हैं, समेट लेते हैं, तब हम वर्तमान में फिर अवेलेबल हो सकते हैं। अगर समेटा नहीं, नहीं, फिजिकली तो हम दूसरे एरिया ऑफ लाइफ में आ गए, लेकिन वहां हमने पास्ट की एरिया जो है, घर में तो आ गए, लेकिन जो ऑफिस में जो बातें हुई है, किसी ने मुझे कुछ कहा है, कुछ क्रिटिसाइज किया है, कुछ बातें हुई है, कुछ मीटिंग हुआ जहां मेरे विचार एक्सेप्ट नहीं किए गए, तो वो बातें चलती रहती, वो हमारे मन में स्टॉप नहीं होता है, इसलिए उन बातों का प्रभाव मेरे इस एरिया ऑफ लाइफ में पड़ता है। फिर वो स्ट्रेस होता है, फिर वो फ्रिक्शन हो जाता है, छोटी छोटी बातों की वजह से रिएक्शन हो जाता है.
समवेयर बिकॉज ये जो पूरी पावर्स थी, बहुत सुंदर आपने ये बात कही है कि पैकअप जो पिछला है और पैकअप जो आगे को हमने विचार किया है उसको करके वर्तमान में आ गया. अगर इन क्वालिटीज के साथ अगर हम जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं तो जो बात अवेलेबिलिटी की और लिसनिंग की है वो सामने आती है. और फिर इसके अलावा और भी कई स्ट्रेंथ्स हैं, कई और वर्च्यूज होंगी जिन पर हम आगे बातचीत करेंगे. लेकिन आज अपनी जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेवारी, एक किसी भी सिचुएशन को लीड करने का जो मूल आधार है जहां से हम शुरू कर सकते हैं, वो आपने हमें बताया. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. हम अपनी हर जिम्मेवारी को निभाना चाहते हैं, बखूबी निभाना चाहते हैं, सही परिपेक्ष में निभाना चाहते हैं. लेकिन उसके लिए पहला कदम जो हम अपने आप को अगर समझें, उठाने की कोशिश करें, तो वो है पार टू लिसन. और सुनना सिर्फ अपने आसपास अपनी सिचुएशन को नहीं, खुद की आवाज को सुनना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरुआत हमसे ही होती है. लीड हमने अपनी ही लाइफ को करना है और फिर उसके बाद अवेलेबिलिटी. और ये जो दोनों चीजें हैं अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो कहीं ना कहीं फुल स्टॉप करने की, पहली बात है पॉज करने की, उसके बाद फुल स्टॉप लगाना. जो पीछे गुजर गया उसे पूरी तरह से पैकअप करके वहां खत्म करें, जो आगे भविष्य के बारे में सोचा है उसे भी सोचने के बाद वहीं खत्म करें, और उसके बाद बिल्कुल आज प्रेजेंट में आ जाएं, अभी में आ जाएं, उसके बाद उसे लीड करें, उस सिचुएशन को देखें. ऐसी बहुत सी और बातें होंगी जो आपके दिल में होंगी, आप सवाल करना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं.
इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वांट टू नो योर नियरेस्ट राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, कॉल अस ऑन 099.
विद ब्रह्मा कुमारीज का ये सफर यूं ही आगे चलता रहेगा. हर सिचुएशन में एक नेतृत्व करने की जो भावना है, जो शक्ति है, वो हम में से हर एक के पास है. किस तरह से उसे हम इमर्ज कर सकते हैं, हर सिचुएशन को कैसे लीड कर सकते हैं, यही जानने का प्रयास चल रहा है. लिसनिंग और अवेलेबिलिटी, ये दो एस्पेक्ट हमने सुने. आगे अभी और बहुत सी बातें हैं, तो फिर अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी. इजाजत दीजिए. ओम शांति.
ओम शांति.